तेरा सरापा या नबी तफसीर है कुरान की। वल्लैल ज़ुल्फ़ें हैं तेरी वश्शम्स है चेहरा तेरा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سيدنا نور الدين رحمتہ اللہ علیہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے اور حضرت شیخ احمد زواری رحمتہ اللہ علیہ روزانہ 40,000 مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہماری طریقت میں سے یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی کثرت سے درود پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہماری مجلس میں تشریف لاتے، اور جیسے صحابہ کرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض پاتے ہم بھی اسی طرح فیض حاصل کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم احادیث مبارکہ کے متعلق رہنمائی حاصل کرتے، اور جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ کروں پیش میں بھی درودوں کے گجرے جو تشریف لائیں کبھی جان عالم، وہ خوابوں میں آ کر بسے میرے دل میں، وہی سامنے ہو میرے آخری دم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ حسب سابق ان عاشقان رسول کا ذکر کیا جائے گا جنہوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا، جنہوں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا، دیدار رسول کے ذریعے اپنے عشق کو بڑھایا، اپنے عشق کی پیاس کو بجھایا، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس رخ انور کو دیکھا جس کی قسم رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی، والضحا ارشاد فرما کر چہرہ مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں کیا، جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کالی کالی وہ مشکبار زلفوں کا دیدار کیا جنہیں قرآن نے واللیل کہہ کر یاد فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ان سچے عاشقوں کا ذکر ہم اس پروگرام میں سن رہے ہیں جو دن رات ذکر مصطفیٰ کرنے والے، قرآن و حدیث پڑھنے والے، عبادات کرنے والے، ریاضات کرنے والے اور تصور مصطفیٰ میں کھوئے رہنے والے تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت کی خدمت میں گزار دیں۔ ان عاشقان رسول کا ذکر کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ عبادات، ریاضات، جو بھی نیک اعمال کیے اس کے سلے میں انہیں رب تعالیٰ نے بہت سے انعامات عطا فرمائے اور قیامت میں عطا کیے جائیں گے، لیکن ایک صلہ انہیں یہ بھی ملا کہ دنیا ہی میں انہوں نے جاگتی آنکھوں سے یا خواب میں زیارت مصطفیٰ کا شرف حاصل کیا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ان عاشقان رسول کے واقعات کی طرف اور سنتے ہیں زیارت رسول کے واقعات۔ جی سید،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۃ الاولیاء کا ایک واقعہ اولاً سناتا ہوں۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشہور ولی اللہ ہیں، ان کا ایک ارادت مند، اس نے بہت چلے کیے، 40 حج کیے، 40 سال تک سوئے نہیں، بس مراقبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں۔ ایک دن عرض کی، حضور اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، مگر آج تک اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل نہیں ہوا، اور نہ ہی کبھی اللہ پاک کی ذات کے رموز و اشارات مجھ پر منکشف ہوئے۔ میں نعوذ باللہ من ذالک شکوا نہیں کر رہا، میں اپنی بدنصیبی کا اظہار کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی زیارت بھی خواب میں ممکن، اور بیداری میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا خاصہ ہے، تو خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 100 بار پروردگار کی خواب میں زیارت کی تھی،
سبحان اللہ۔
حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی پڑھا ہے۔ تو خیر، یہ انہوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کی، فرمایا آج کوئی ریاضت نہیں کرنی، کوئی مجاہدہ نہیں کرنا، سو جاؤ. اچھا یہ سو گئے، خواب میں اللہ کے حبیب علی صلات اسلام کی زیارت ہوتی ہے.
سبحان اللہ.
اللہ کے حبیب علی صلات اسلام نے فرمایا اللہ پاک سلام فرماتا ہے.
اللہ
اللہ کے نیک بندے کیسے کس مقام پر پہنچے ہوتے ہیں کہ رب کریم ان کو سلام فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہماری بارگاہ سے نا امید لوٹنے والا بہادر نہیں ہے، میں تیری 40 سال کی ریاضت کا ضرور صلہ دوں گا. فرمایا ذوالنون مصری کو ہمارا سلام کہنا. جب انہوں نے اپنا خواب ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنایا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ نکلے.
سبحان اللہ.
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر ہیں، بارگاہ الہی میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس سے بھی آگاہ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیجتا ہے کہ ان کو دیدار بھی کراؤ اور میرا سلام بھی پہنچا اور ان کو خوشخبری بھی سنا.
کیسی امید دلائی جا رہی ہے کہ جتنا آپ نے عمل کیا ہے اس کا صلہ دیا جائے گا. اور یہ کیا چیز تھی کہ یہ ریاضت کرتے رہے، پھر ایک اللہ والے کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سو جاؤ، اور اسی دن ان کا کام بن جاتا ہے. یہ کیا ہے؟
وہ کسی نے کہا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. وہ اللہ اللہ کریے تاگل بندیے مرشد کامل پڑیے تاگل بندیے اللہ اللہ کریے تاگل بندیے مرشد کامل فریت تاگل بندیے. کسی عاشق رسول نے کہا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور جو حساس عشاق ہیں وہ یوں کہتے ہیں سنا ہے، بعض کہتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، گو میں عاشق نہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور امیر اہل سنت کا انداز محبت، انداز عقیدت کیا ہے؟ اللہ اکبر، سنیں. بلاؤں کی اس قابل نہیں ہے میرا حجرا یا رسول اللہ، یقین جس کے آگے چودوی تمہارا ہے وہ چہرہ لکھ را یا رسول اللہ. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصوف پر بہت پیاری کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں ایک زیارت رسول کا واقعہ ہے، عرض کرتا ہوں. ابو مسلم، یہ کوئی بزرگ گزرے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں کسی مالدار شخص نے ایک درویش کو چوری کے الزام میں گرفتار کروا دی. 4 راتیں گزر گئیں مگر وہ قید خانے میں. ایک رات ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، फरमाया, ए अबू मुस्लिम, अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि अल्लाह के दोस्त को बेगुनाह कैद खाने में डाल दिया गया है, अल्लाह का
अल्लाह
वली, तुम जाओ इसे आजाद करो। अब ये बुजुर्ग ख्वाब से बेदार हुए तो ना चप्पल पहने ना इमामा पहनो, नंगे सर। आका ने फरमाया कैद खाने की तरफ दौड़ते हुए जा रहे। जब ये पहुंचे तो कैद खाने का दरवाजा खोल दिया गया। इस दुर्वेश को ये बाहर लेकर आए, माफी तलब की, कहा कोई हाजत हो तो बयान कर। उस दुर्वेश ने कहा कि ए अमीर, जिस खुदा की ये शान है कि आधी रात तुझे बिस्तर से उठाकर उसने तुझे मेरे पास भेज दिया, उसके बंदे को ये जेब देता है कि वो तुझसे सवाल करे।
अल्लाह।
अब ये सुनकर दुर्वेश की बात, वो बुजुर्ग अबू मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे और दुर्वेश के सामने से हट गए। मेरे आका ख्वाबों में आ रहे हैं, बिगड़ियां बना रहे हैं, गुलामों को छुड़ा रहे हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं। सुभान अल्लाह।
और अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ इनकी लौ कैसे लगी? हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने हजरत जिब्रील अमी को कहा था कि जिससे हाजत है उसको पता है,
उसको पता है।
तो ये बंदे से सवाल नहीं कर रहे, इनकी लो रब से लगी हुई है। सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक इन सच्चे आशिकान रसूल के सदके में हमें आशिक रसूल बना दे, हम आशिक इलाही बन जाए, और अल्लाह के महबूब अली सलातु सलाम की हमें ज़ियारत उनकी रिजा के साथ नसीब हो जाए।
हाँ, सर
ठीक
आपने
है।
इश्के रसूल और इश्के इलाही दोनों का जिक्र किया, तो ये इश्के इलाही की मंजिल कैसे मिलेगी? पहले कौन से स्टेप पार करने होंगे?
बहरे के जब तक अल्लाह के महबूब अली सलातो वसलाम पर ईमान, उनकी शरीयत, उनकी इताअत, उनकी फरमाबरदारी नहीं होगी, हुजूर की सच्ची गुलामी नहीं होगी, तो रब तबारक व तआला की मारिफत, पहचान, कुर्ब वो कैसे नसीब हो सकता है।
पहले इश्के रसूल हासिल होगा, फिर ये आगे की तरफ बढ़
बिल्कुल बिल्कुल।
सकेगा।
तो अल्लाह पाक नसीब फरमाए अमीर अहले सुन्नत, वो बारगाह इलाही में दुआ करते हैं। कभी तो मुझे ख्वाब में मेरे मौला, कभी तो मुझे ख्वाब में मेरे मौला, कभी तो
नाजरीन, आपने सुना कि अल्लाह पाक के नेक बंदे कैसी उसकी बारगाह में मकबूलियत रखते हैं कि अल्लाह पाक अपने महबूब अली सलातु सलाम के जरिए उन्हें पैगाम इरशाद फरमाता है, उन पर सलाम फरमाता है। तो हमें इन औलिया का अदब करना है, एहतराम करना है, इनसे निस्बत कायम करनी है, इनकी सोबतें हासिल करनी है, इनकी किताबों का मुताला करना है, इनके वाकयात को पढ़ना है, सुनना है। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हमें भी अच्छी सोच नसीब होगी और कुर्बे इलाही नसीब होगा। तो आप आखिर तक शामिल रहें, मजीद भी इंशाअल्लाहुल करीम हम सुनेंगे कि आशिकान रसूल ने कैसे दीदारे रसूल किया और वो वाकया क्या था, वो ख्वाब क्या था। जिससे यदि मजीद किसी आशिक रसूल का वाकया,
जुनेद बगदादी का वाक्य,
अल्लाह अकबर,
रहमतुल्लाह ताला अलैह,
हमारे मशायख में से भी हैं
मशायख
जैसे
कादरी
कादरिया।
सिलसिले के मशायख में से हजरत श्री सकती रहमतुल्लाह अलैह के भांजे हैं आप और इन्हीं के मुरीद भी हैं।
अल्लाह
तो जुनैद बगदादी पीर व मुर्शिद का बहुत एहतराम करते थे, और मुरीद को अपने पीर का एहतराम करना ही चाहिए, भांजे को अपने मामू का एहतराम करना ही चाहिए। अच्छा, इनकी मुबारक हयात में आप वाजो नसीहत करना, बयान करना भी गवारा नहीं करते थे। एक बार मुरीदों ने अर्ज की, सैयदी आप हमें नसीहत किया करें, वाजो नसीहत करें, क्या करें, हमें बयान किया करें। फरमाए जब तक मेरे शेख हजरत श्री सकती मौजूद हैं मैं कोई बयान नहीं कर सकता। ख्वाब में अल्लाह के हबीब अली सलातु सलाम का दीदार नसीब हुआ। फरमाए जुनेद लोगों को वाजो नसीहत क्यों नहीं करते? वाजो नसीहत करो ताकि अल्लाह पाक तुम्हारे जरिए लोगों को नजात अता फरमाए। इस ख्वाब के बाद जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को ये ख्याल आया कि शायद मेरा दर्जा मेरे पीर मुर्शिद के बराबर हो गया है, इसलिए तो मुझे अकाली सलातम खुद फरमा रहे हैं कि तुम नेकी की दावत दो, तबलीग करो। सुबह हुई तो हजरत श्री सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मुरीद को भेजा। जब जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज फजर का सलाम फेरा तो उसने आकर कहा कि तुमने मुरीदों के कहने से तबलीग तालीम ना की, ना मशायख बगदाद की सिफारिश कबूल की, मेरा पैगाम भी पहुंचा, तुमने बयान शुरू नहीं किया, वाजो नसीहत शुरू नहीं की, अब तो आका का हुक्म हो चुका, अब तो वाज किया करो। इनको हो रही है और देखो मुर्शिद को भी पता है अल्लाह वालों की क्या शान है।
तो वो इनके दिल में जो ख्याल एक आया था कि शायद, तो उसका एक तरह से ये जवाब भी था।
जी जी, हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस वक्त मैंने जान लिया कि मेरे शेख मेरे दिली कैफियत से वाकिफ है और मेरी जाहिरी बातनी हर हालत से बाखबर है, और मुरीद को अपने पीर से ही हुस्ने ज़न रखना चाहिए। अच्छा, इनका दर्जा मेरे दर्जे से बुलंद है क्योंकि वो तो मेरे असरार से वाकिफ है, मेरी कैफियत यह है कि मैं उनके अहवाल नहीं जान सकता, भाई मुझे नहीं पता उनका मकाम क्या है। मेरे मुर्शिद को तो पता है, रात आका ने ज़ियारत करवाई तो सुबह उनका पैगाम आ गया कि देखो अब तो आका ने फरमा दिया, बयान किया करो। अल्लाह, इसके बाद आप पीर साहब के पास हाजिर हुए और अपने ख्याल से रुजू किया कि मैं पीर के हम पल्ला नहीं। अर्ज की, सैयदी आपको कैसे मालूम हुआ कि मैंने ख्वाब में जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है? सही सकती रहमतुल्लाह ने फरमाया मैंने ख्वाब में अल्लाह पाक का दीदार किया और अल्लाह पाक ने मुझसे फरमाया कि मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुनेद के पास भेजा है ताकि वो लोगों को वाजो तबलीग किया करें ताकि बगदाद के लोगों की दिली मुराद पूरी हो जाए।
सुभानअल्लाह। नाजरीन, इस हिकायत से हमें वाजो नसीहत की अहमियत भी पता चलती है कि देखिए बाकायदा पैगाम दिया जा रहा है और हुक्म इरशाद फरमाया जा रहा है कि आप लोगों को वाजो नसीहत करें। तो ये नेकी की दावत देना ये बड़ा एक अहम फरीज़ा है हम मुसलमानों पर, ये ज़रूरी है कि हम इस नेकी की दावत के काम को आम करें ताकि बुराइयां कम होती चली जाएं, नेकियां बढ़ती चली जाएं। तो इस मामले में हर मुसलमान ही मुबल्लिग है, जो हमें इल्म है वो बात दूसरे तक पहुँचा दें, किसी को बुराई करता देखें तो उससे इसको मना करें।
लेकिन बल्लिगु अन्नी वलव आया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, मेरी तरफ से पहुंचा दो अगरचे एक बात ही हो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसके तहत लिखा है कि हर मुसलमान मुबल्लिग है, यानी कि भी मैं कौन सा इमाम हूँ, मैं कौन सा खतीब साहब हूँ कि मैं नेकी की दावत दूँ। अच्छा, हर अब्बा आलिम होता है, हर वालिद आलिम होता है, बच्चों को नसीहतें करता ही ना, क्या माँ आलिमा होती? तो जो मालूम है, जो नमाज का मालूम है ना, कुरान का पता है ना, और गुनाहों का पता होता है, तो वो आगे बताना चाहिए। अपने ऑफिस के अंदर हैं आप, स्कूल के अंदर हैं आप, टीचर हैं, स्टूडेंट्स को कुछ गाइड करें, तो नेकी की दावत को आम करना
एक
चाहिए।
ये तसव्वुर होता है ना कि ये इसका इस्लामी गेटअप है, ये दाढ़ी वाले हैं, ये मौलवी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, ये ही नेकी की दावत देंगे, इन्हीं का ये काम है, तो ऐसा नहीं है। इसमें इस्लामिक गेटअप या हमारा जो भी, हम मुसलमान हैं तो हमें नेकी की दावत
बिल्कुल
देनी है।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये भी पता चला कि पीर की सादगी से धोखा नहीं खाना चाहिए, पीर पीर होता है।
तो जैसे आला हजरत ने फरमाया कि जो भी कमाल मिले तो पीर का सदका
अरे
जाए।
अरे क्या बात, कितनी जबरदस्त बात। जो नेमत किसी से भी मिले उसे अपने पीर का सदका जाने, कि पीर का सदका है। और जब बड़े बुजुर्ग कह दें तो फिर उनकी बात माननी चाहिए। पीरो मुर्शिद ने फरमा दिया तो भाई नेकी की दावत दे। अच्छा ये भी पता चला कि उस्ताद साहब के होते हुए, पीर साहब के होते हुए अगर कोई तालिबे इल्म या मुरीद बयान करे तो इसमें कोई हरज नहीं। देखो पीरो मुर्शिद खुद सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि बयान करो। अच्छा इसमें वो जो अल्लाह का दीदार, तो उसमें हमने पहले भी अर्ज किया कि ख्वाब में अल्लाह पाक का दीदार हो सकता है। और ये अल्लाह वाले कितने रोशन बातिन वाले होते हैं, कितने पारसा होते हैं, अल्लाह रसूल की बारगाह में इनका मकाम कितना है कि इनको अल्लाह की ज्यारतें होती हैं, इनको रसूल की ज्यारतें होती हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और हम तो सारा दिन जो धंधे करते हैं वही ख्वाब में देखते हैं, या शैतानी ख्यालात अस्तगफिरुल्लाह घेर लेते हैं। अल्लाह पाक रहमत फरमाए, जब हमारे वो दिन के मामला ठीक हो जाएंगे तो रात ख्वाब के मामला भी बेहतर हो जाएंगे।
इसमें सोच का बड़ा अमल दखल है। हमारी सोच मुस्बत होनी चाहिए, दीनी होनी चाहिए, हमारे ख्यालात अच्छे होने चाहिए, हमारे आमाल अच्छे होने चाहिए, तो इंशाअल्लाह हमारे ख्वाब भी अच्छे होंगे। और ये तमन्ना लेकर हम जीते रहें, इसकी दुआएं करते रहें, और रोज़ाना इस आस पर हम सोएं कि आज हो सकता है करम हो जाए। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन उनका करम तो उनका करम है, उनके करम की
बात
ना
ना
पूछो।
पूछो।
तो करम पर नजर रखे, न जाने कब जलवा मुस्तफ़ा हमें भी देखना नसीब हो जाए। प्रोग्राम आखिरी वक्त की तरफ बढ़ रहा है और प्रोग्राम के आखिर में हम ज़ियारत रसूल का वजीफा भी सुना करते हैं, आइए वो भी सुनते हैं।
सआदत उद्दारैन में है, बाज बुजुर्गों से मनकूल है, जो शख्स ख्वाब में जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना चाहे तो सोने से पहले वुजू करे, पाक साफ जगह पर बैठे, सूरह वश्शम्स, सूरह वल्लैल और सूरह वत्तीन इस तरह पढ़े कि हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, 7 रातें 7 नाइट इसी तरह करता रहे, दुरूद पाक की कसरत भी करे और यूं दुआ मांगता रहे, अल्लाहुम्मा रब्बिल बलदिल हराम वल हिल्ली वल हराम والركن والمقام اقرأ على روح محمد من السلام। तो इंशाअल्लाह करीम ज़ियारत रसूल से मुशर्रफ होगा इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह करीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इस तरह कुछ खसूसियत का हामिल हो गया कि आज हमने ज़ियारत रसूल के वाक़ियात भी सुने और दीदार इलाही के वाक़ियात भी सुने, और ज़िमनन हमने मदनी फूल भी सुने, नेकी की दावत के मुतालिक सुना और बुज़ुर्गों के मकाम और मर्तबे के मुतालिक सुना। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ सुना याद रखने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहें, दूसरों को भी इसकी दावत देते रहें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातम नबीहीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तेरा सरापा या नबी तफसीर है कुरान की, वल्लैल ज़ुल्फ़े है तेरी, वश्शम्स है चेहरा तेरा।